نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محسن انسانیت اس میں سے متنی دور ہم کر رہے ہیں اور ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی تھی جس کو واقع عف کہتے ہیں اس کو برا کیا آج ہم اسی پر تبصرہ تجزیہ اور تزکیہ دیکھیں گے پیج نمبر 317 کا بالکل بگننگ پروپیگنڈے کے اس طوفان اور اس کے پیدا کردہ بحران یعنی کرائسس کی اتھا تاریکیوں کا توڑ کرنے کے لیے یکا یک افق وحی چمک اٹھا یعنی حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وحی نازل کی جس سے آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی معاشرے کے ذہنی عالم میں صبح الہام نمودار ہوئی اور آیات بینات کی کرنیں روحانی فضاؤں میں رقص کرنے لگیں کیا ہی خوب مناسبت تھی کہ جو سورت اس بحران کا ازالہ کرنے اتری اس کا نام سورت نور قرار پایا یعنی اندھیروں سے روشنیاں اس سورت میں جماعت اور معاشرے پر تبصرہ کیا گیا اس کی کمزوریاں واضح کی گئیں اور ان کمزوریوں سے اسے مستقل طور پر پاک کر دینے کے لیے قانونی اور اخلاقی ہدایات دی گئیں اس مارکہ آرا سورت کے مضمون کی اٹھان ہی چوکا دینے والی ہے یعنی سورت کا آغاز بہت سٹرونگ ہے شروع کا بگننگ فرمایا گیا یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور جسے ہم نے ذمہ داری کے طور پر اسلامی معاشرے کے لیے لازم ٹھہرایا ہے اور جس میں ہم نے نہایت واضح باتیں پیش کر دی ہیں شاید کہ تم لوگ ان سے فائدہ حاصل کرو کتنا سٹرونگ بگننگ ہے نا کہ یہ چیزیں ہلکی نہ لو یہ اللہ کی طرف سے ہیں فرض ہیں اور اس میں چیزوں کو کھولا گیا ہے اب سورت نور کی صدا معاشرے میں گونجتی ہے جو لوگ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا یعنی اس پروپیگنڈے میں آنے کا اس کو پھیلانے کا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ سمجھ آ رہے نا آیتوں سے کتنا بڑا طنز ہے کہ ایک بے ثبوت الزام جس کے لیے کوئی واضح قرینہ موجود نہ تھا وہ ایک طوفان کی طرح اٹھا اور کسی بیرونی دشمن اور حریف کی طرف سے نہیں بلکہ خود برسوں کی تربیت یافتہ مسلم جماعت کے اپنے اندر سے اٹھا پھر یہ ایک آدمی کی وقتی لغزش نہ تھی مہینہ بھر تک ایک ٹولے کا ٹولہ ذہنی مد و جزر پیدا کرتا رہا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جماعتی ماحول میں یہ کمزوری موجود ہے کہ اس کے معمار ہی اس کی تباہی کی مہم چلائیں اس فضا میں ایسے رکھنے ہیں یعنی سوراخ اس فضا میں ایسے رکھنے ہیں کہ علم برداران صداقت کی سوسائٹی میں جھوٹ برگوبار لائے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بہتان نہیں تھا اسیان کی ایک بہتی گنگا تھی یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ایک بہتان ہے نہیں اس سے بڑھ کے یہ گناہ کی بات تھی بہت بڑی بات تھی اسیان کی ایک بہتی گنگا تھی جس سے کسی نے خم اور کسی نے جام بھرا اور کسی نے چلو ہی لیا یعنی ہر ایک نے اپنے حساب سے اس میں کم یا زیادہ حصہ ڈالا سو جس نے جتنا بھی حصہ لیا اپنے لیے برائی ہی سمیٹی پھر اشارہ کیا گیا کہ اس فتنے کے شروع کرنے والے اور اس امام شر کی طرف جس نے پہلی چنگاری ڈالی تھی پھر برابر شولوں کو دامن سے ہوا دیتا رہا یعنی عبداللہ بن ابی سورت نور سوال کرتی ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے آیت 12 12 نمبر کتنی اخلاقی اپیل ہے اس میں شریفانہ جذبات اور مومنانہ حس کے لیے کتنا تیز کچوکا ہے ان الفاظ میں مدعا یہ ہے کہ محض اتنی سی بات کہ اسلامی معاشرے کی ایک شریف ترین خاتون قافلے سے بچھڑ جاتی ہے اور اسی معاشرے کا ایک دوسرا معزز رکن اس کو راستے میں پا کر ساتھ لے آتا ہے تمہارے لیے درجہ آخر کی بدگمانی کی بنیاد کیوں بن گئی کیا تم میں سے کوئی مرد و عورت ایک اتفاقی حادثے کے طور پر اس صورت سے دوچار ہوتا تو وہ لازماً اسی پستی میں گرتا کیا اپنے اخلاق و کردار کے بارے میں تمہارا اندازہ یہی تھا کیا تمہارے معاشرے کی سطح اتنی گری ہوئی ہے کہ اس کے دو افراد اگر اتفاقاً علیحدگی میں رہ جائیں تو وہ بدکاری سے ورے ورے نہیں رکنے کے اگر تم اپنے بارے میں اس پستی کا تصور نہیں کر سکتے تو تم اپنی جماعت کی ایک بہترین خاتون اور اس کے ایک ممتاز رکن کے بارے میں ایسا ذلیل تصور باندھنے کا کیا حق رکھتے ہو بات سچ ہے نا आप देखिए कि गंदे से गंदे मुआशरे में भी ये काम ऐसे ही एक लम्हे के लिए हर बंदे से तवक्को उसकी नहीं रखी जाती। तो एक पाकीज़ा मुआशरे में ऐसे हालात का यही मतलब है कि इसके अंदर गंदगी छुपी होगी। इस मुआशरे की बड़ी अक्सरियत इस दौरे बहरान में भी अपनी अखलाकी अजमत पर कायम थी, वरना अगर सारा जिस्म इस जहर को कबूल कर लेता और इसकी जहनी मुदाफ़त करने में आजिज़ रह जाता तो ये हमला इसका शेराज़ वजूद बखेर कर रख देता। कितना सही रद्द अमल था हजरत अबू अय्यूब अंसारी का, जब इनकी बीवी ने इनसे इन गंदी अफवाहों का तस्करा किया, वो कहने लगे, अय्यूब की माँ, अगर तुम आयशा की जगह इस मौके पर होती तो क्या ऐसा फेल करती? वो बोली, खुदा की कसम मैं ये हरकत हरगिज ना करती। हजरत अबू अय्यूब ने कहा, तो आयशा तुमसे कई दर्जे बेहतर हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर सुफवान की जगह मैं होता तो इस तरह का ख्याल तक ना कर सकता था। सुफवान तो मुझसे अच्छा मुसलमान है, ये चाहिए। इसको कहते हैं मुस्लिम सोसाइटी, और इसको कहते हैं अकीमुस्सला। जब किसी सोसाइटी में नमाजें पढ़ी जाती हैं तो उसके बाद इसी किस्म के लोग वजूद में आते हैं। और कहाँ छोटी छोटी बात पे दूसरे की लेग पुलिंग करना, ये तो मुसलमान माशरों की बात नहीं है। इसके बाद सूरत नूर कानूनी नुक्ते नज़र से सवाल उठाती है कि वो लोग अपने इल्ज़ाम के सबूत में चार गवाह क्यों न लाए? अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। ये बिल्कुल शुरू की आयतों में आयत 13 में आता है, यानी किसी मर्द और औरत की इस्मत के दामन पर धब्बा डालना महज एक दिल लगी नहीं है, ये एक संगीन मामला है और इस पर एक जिंदा निज़ाम मुआशरा में कानूनी कार्रवाई वाजिब हो जाती है। जिस तरह किसी शरीफ शहरी के बारे में उठकर ये कह देना किसने कत्ल किया है, इसने चोरी की है, इसी तरह बल्कि इससे बढ़कर ये दावा करना कि फलां शख्स ने बदकारी की है, एक सरसरी सी बात नहीं कि आई गई हो जाए, ये इंतहाई जिम्मेदाराना एहसास चाहती है। ऐसे इल्जाम लगाने पर इनका सबूत देना और इनके लिए कानूनी शहादत फराहम करना वाजिब हो जाता है। अब जो लोग इस्लामी माशरे के दो शरीफ और मुअज्जज शहरियों के मतलब अपनी आंखों से कोई बात देखे बगैर महज अफसाना तराजी के तौर पर एक बहतान का चर्चा करते फिर रहे हैं, इनका फर्ज यह है कि वो सबूत और शहादत लाएं, वरना कानून के मुताबिक वो खुद झूठे और मुजरिम है। फिर सूरत नूर मुस्लिम माशरे के कमजोर उनसर की कमजोरी को नुमाया करती है कि जरा गौर तो करो, इस वक्त तुम कैसी सख्त गलती कर रहे थे कि जबकि तुम्हारी एक जुबान से दूसरी जुबान इस झूठ को लेती चली जा रही थी और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके मुतालिक तुम्हें कोई इल्म ना था, तुमने इसे एक मामूली बात समझा, हालांकि अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी बात है। क्यों ना इसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात जुबान से निकालना जेब नहीं देता। सुबहान अल्लाह, ये तो एक बहतान अजीम है। ये किसी भी माशरे और किसी भी निज़ाम जमात की, खसूसन जबकि वो दुनिया भर की अखलाकी इसलाह के लिए कायम हुआ हो और इसके ज़ेरे असर एक तमद्दुनी और सियासी तहरीक भी चल रही हो, बड़ी भारी कमजोरी है कि इसमें बेसरोपार बेहुदा और गैर जिम्मेदाराना बातों का आसानी से चलन हो सके। कान जो कुछ सुने उठाकर दिल में रख लें और दिल जुबानों के हवाले कर दें और जुबानें आगे से आगे मुंतकिल करती जाएं। आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं। देखिए, पहले तो लोग आम बैठ के गॉसिप करते थे, या जिसको कीलो काल कह लें, गप्पे लगाना। अब कहाँ करते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, मीडिया पे आके पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपनी गपबाजी। कितना बड़ा बवाल है जो लोग ऐसे शोज मुनक्कद करते हैं जिसमें सिर्फ लोगों को डिस्कस किया जाता है। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। कोई गौर और तामुल ना हो, कोई तहकीक ना हो, कोई रद्दोकद ना हो और किसी जगह जाकर सिलसिला रुके नहीं, जो जिस शख्स के खिलाफ जैसे कुछ कलेमात भी कहता जाए बिल्कुल झूठ हो, जो जिसकी पगड़ी उछालना चाहे इसे पूरी आज़ादी हो और जो जिसके दामने इफ्फत की धज्जियां बखेरना चाहे, माहौल इसे वसी मौका बहम पहुंचा दे, अच्छा चमने अफकारो किरदार होगा जिसमें फितने का माली कांटे बोता रहे और जुबानों की कियारियां कांटे उगाती रहे, जिस माशरे में सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हो और सफवान रजी अल्लाहु अन्हो जैसी हस्तियां एक मुनाफिक के छोड़े हुए शोशे से महफूज नहीं रह सकती, इसमें और किसकी इज्जत व आबरू की खैर होगी? यानी अगर आयशा पे इल्जाम लग सकता है तो फिर बाकी तो हर एक पे लग सकता है। सूरत नूर की आवाज में गूंज और पैदा हुई। जो लोग पाक दामन और भोली भाली ईमानदार औरतों पर तोहमतें लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखरत में लानत की गई और इनके लिए बड़ा अजाब है। आयत 23 है इसमें। इस आयत में तो गोया हजरत आयशा के किरदार की तस्वीर खींच कर रख दी गई। एक ईमानदार और पाक दामन खातून जो मिजाज की सीधी सादी थी और जिनको तसव्वुर तक न था कि बद चलनी क्या होती है और कैसे की जाती है, जिसके हाशिए ख्याल में भी कभी ये अंदेशा न गुजरा होगा कि कोई इन पर भी एक घनौना इल्जाम लगा देगा। इस तस्वीर में इनकी मजलूमियत पूरी तरह बोल रही है। मजलूमियत की ये तस्वीर अखलाकी तौर पर एक दिल को झंझोड़ देती है। बदकिस्मती से जो मुखलस ईमानदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात और तहरीक के वफादार अफराद इस सैले तुंदो थे, यानी पानी का सैलाब का या बहाव करेला, इसमें बह गए थे, इनमें से एक वो हस्ती भी है जिसने तहरीक की बड़ी खिदमात अंजाम दी थी और जिसने इसके फिक्री और अदबी सरमाए में इजाफा किया था। ये थे हसान बिन साबित। सूरत नूर की इल्हामी शुआएं जिन हसास लोगों के दिलों में निश्तर बनकर उतर रही थी, आज हसान रजी अल्लाह अन्हु भी इनके जुमरे में थे। इनका मरतबा दायरे तहरीक और दरबार नबूवत में खासा बुलंद था। मुख्तलिफ मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर खास फरमाइश करते और तवज्जो दिलाते कि शेर व अदब की जाहली ताकतों के हमले का जवाब शेर व अदब ही से दें और इस्लाम की तर्जुमानी करें। इस सआदत का तसव्वुर कीजिए कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसान को खुद मिंबर पर बिठाया कि वो इस्लामी तहरीक का तराना अलापें। इनके इसी मर्तबे का लिहाज खुद हजरत आयशा को इस कदर था कि इस बहरानी दौर के गुजर जाने के बाद वो हमेशा इनकी इज्जत करती रहीं। बस औकात इनको याद जलाया जाता कि इस शख्स ने आपके खिलाफ कीचड़ उछालने की मुहिम में हिस्सा लिया था, तो वो शराफत नफ्स के इंतहाई बुलंद मुकाम से फरमाती कि जाने दो, उन्होंने मुखालफ इस्लाम शोरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तहरीक और इस्लामी तहरीक की तरफ से हमेशा पुरजोर जवाब दिया है और शायरी के महाज पर खासा जौहर दिखाया है। ये कितनी अच्छी बात है। यानी हजरत आयशा को तकलीफ तो पहुंची थी, लेकिन वो कैसे चेंज करें, कोई बात नहीं, इस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा भी तो किया था ना। ये है असल में एक मुसलमान सोसाइटी का सेहतमंदाना किरदार। हम हमेशा अपनी जात से परखते हैं किसी के अच्छा या बुराने को। फलां बहुत अच्छा क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मेरे लिए बहुत केयरिंग है, तो मैं करते हुए हम दूसरों की खूबियों और खामियों को हाईलाइट करते रहते हैं, जबकि इंसान को इंसान समझा जाए। कभी किसी की कोई बुरी बात नजर आए तो अच्छी बात को भी सामने रख लीजिए। लेकिन अमरे वाक्य बहर हाल यही है कि तहरीक इस्लामी के ये मुमताज फर्द मुनाफिकीन के उठाए हुए फितने के घेरे में आ गए। इस बहरान में इनका अपनी जगह मुखलिसाना मगर तहरीक के लिए नहायत मुजिर पार्ट देखकर आदमी ये दर से इबरत हासिल करता है कि ना कोई बेहतर से बेहतर शख्स अपने बारे में ये जमानत रखता है कि वो मुगालतम के किसी चक्कर में ना पड़ेगा और ना दूसरी नुमाया तरीन शख्सियतों के बारे में वो बेफिक्र हो सकता है कि वो किसी फितने के घेरे में ना आएंगी। हर इंसान बड़ा हो या छोटा, हर वक्त शैतान की कमान से निकलने वाले तीरों की जद में है, बल्कि फितने हर अहम और बड़े आदमी के गिर्द घेरा डालने का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करते हैं। इसी वजह से तहरीक इस्लामी की दी हुई बुनियादी फिक्र यह है कि अशखास की बजाय असूलों के गिर्द जमात मुजतमे हो। क्या बताए, इसको हाईलाइट कर लें, असूल पे चलें। हम शख्सियात को देखकर रूल्स बदल लेते हैं ना, ये ठीक नहीं है। इसलिए कि ये ज़रूरत है इस बात की कि आप इस चीज़ को असूलों पर लेकर चलें, और रूल्स जब सबके लिए एक होंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा सेहतमंद माहौल होगा। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके मुरीदों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने तहरीक इस्लामी के एक मुमताज फर्द को शिकार कर लिया था। वो निफाक के मारे शरंगेजी कर रहे थे और हसान रजी अल्लाह अन्हु बिन साबित इखलास के साथ इनके बरपा करदा फितने को तकमील तक पहुंचाने में सरगर्म थे। ये कहना गलत ना होगा कि तहरीक के लिए अब्दुल्ला बिन उबई का निफाक इतना खतरनाक और मुजिर ना था जितना हसान बिन साबित का इखलास। इसको हाईलाइट करिएगा, एक तरफ निफाक और एक तरफ इखलास है। जो इकदाम इखलास और नेक नियति से किए जाते हैं वो जरूर जरा रिसानी में ज्यादा कामयाब रहते हैं बामुकाबला इन इकदामात के जो जानते बूझते शरारत के तौर पर किए जाते हैं। यानी वक्ती तौर पे हलचल तो मच गई सोसाइटी में, लेकिन आखिरी अंजाम किसका बेहतर हुआ। आखिर में कौन सी चीज सामने आई जो सच थी, जिसमें इखलास था। हसन बिन साबित इस बात का एहसास न कर सके कि वो किन लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो कैसे अफराद के नुक्ते नजर को फैला रहे हैं, वो किन शख्सियतों के ख्यालात और अजायम की तर्जुमानी कर रहे हैं और इनकी हरकत और सकनात मुआशरे के किस उनसर की हिमायत में जारी हैं और जमात की कैसी टोली के हाथ मजबूत कर रही हैं। मशीयत रब्बानी थी कि वो इस मामले में फरासत मोमिन से काम न ले सके। अब्दुल्ला बिन उबई के साथ इस्लामी मुआशरे का मामला दूरी और बेगानगी का था, यानी अब्दुल्ला बिन उबई से लोग बेगाना हो गए या उसको एहसास दिलाया कि तुमने अच्छा काम नहीं किया। इसकी कलूह अंदाजी काबिल बर्दाश्त थी। कलूह किसको कहते हैं? स्याही को। लेकिन हसन बिन साबित से जमात की जो युगानगत थी, इसकी वजह से जज्बात में खुलाव पैदा होता था कि हमारे नियाम की एक तलवार हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये सूरत जब भी किसी तहरीक और तंजीम में पैदा होती है तो सब्र के पैमाने लबरेज हुए होंगे, मगर मुस्लिम जमात का कड़ा इखलाकी डिसिप्लिन जज्बात के आगे रोक बना खड़ा था। एक शख्सियत ऐसी थी जो जब्त बरकरार ना रख सकी। वो कौन थी? ये सुफान बिन मुअत्तल थे, जिनके साथ ये सारी चोट लगाई जा रही थी ना, जिनको एक ये सदमा था कि हजरत आयशा जो इनके लिए माँ के बराबर थी, इन पर तोहमत लगाई जा रही थी, और दूसरी तरफ ये कर्ब के अफसाने का दूसरा सिरा खुद इनकी जात से जोड़ा गया था, यानी उनको हजरत आयशा पे इल्जाम लगाने का बड़ा दुख था, और दूसरा ये कि वो इल्जाम भी इनकी जात पे लगा। इसको समझे तो वाकई फिर आप भी हजरत सफवान के दुख को महसूस कर सकेंगे कि किस तरीके से वो इस वक्त दुखी और तकलीफ में थे। वो शख्स के जो साहबे बदर में से था, कौन? सफवान बदरी साहबी थे, जिसने तहरीक की खिदमात सर अंजाम दी थी, जो जुती सुती होने के लिहाज से मारूफ था, जिसके किरदार में आज तक कोई आसार फिस्क व फजूर के ना पाए जाते थे, और जिसने एक शर्मीले बेटे की हैसियत में हजरत आयशा को देखे बगैर और सारे रास्ते बात किए बगैर पूरी इख्तियात के साथ पिछले पड़ाव से लश्कर गाह तक पहुंचाया था, इनका खून इस ज्यादती पर बुरी तरह खौला। सफवान रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत हसन के कुछ अशार सुने जो मुनाफिकीन के लगाए हुए बुहतान अजीम पर मुश्तमिल थे। जुबान हजरत हसन की थी, जिसे वक्ती तौर पर अशरार के ख्यालात ने उधार ले लिया था, फन इनका था और जहन गैरों का बोल उठा। सुफवान की इनसे झड़प हो गई और उन्होंने तलवार से वार कर दिया। साबित बिन कैस बिन शमास ने मौके पर बचाव किया और सुफवान को पकड़कर बांध लिया और बनी हर्स की हवेली में ले गए। आखिर यह कदिया मुस्ने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। हसन और सुफवान दोनों को तलब किया गया। सुफवान ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस शख्स ने मुझे अजियत दी है और मेरे हक में सख्त बदगोई की है, सो मुझ पर गुस्सा आ सवार हुआ और मैंने इसे मारा। आपने मुलायमियत से, यानी सॉफ्टनेस से, नरमी से हसन रजी अल्लाह अन्हो को समझाया बुझाया और बाद में सुफवान रजी अल्लाह अन्हो की तरफ से तलवार के जख्म के बदले दियत दिलवाई। ये एक लीडर का किरदार होता है। सुफवान की गैरत चूंकि बिल्कुल फितरी थी, सो हसन बिन साबित नरम पड़ गए और खुदा ने इनको इस खतरे से बचा लिया कि वो किसी गलत जज्बे की रो में आगे बहते चले जाते और तहरीक के लिए मजीद मुजबे जरर होते, यानी तकलीफ पहुंचाते। क्योंकि देखिए, जब किसी गिरोह के दो लोग आपस में लड़ते हैं तो नुकसान उस तहरीक को होता है। हजरत हसन का ये जज्बा नदामत आखिर एक कसीदे की सूरत में उमड़ पड़ा, जिसमें शेर के पानी से उन्होंने अपने ही लगाए हुए धब्बे को हजरत आयशा के दामने पाक से धोने की कोशिश की। क्या खूब फरमाया, हसन उन रजान उन मा तजुन्न बिरीबत व तुसबिहु गर्सा मिल लहू मिल गवाफिल मुहज्जबत कद तैयब अल्लाहु खीमहा व तहरहा मिन कुल्ली सूइन व बातिल فإن الذي قد قيل ليس بلاعت ولكنه قول امرئ بي ماهل। ترجمہ کیا ہے؟ وہ ایک عفت ماب خاتون ہے، پردہ نشین ہے، ہر شک و شبہ سے بالا تر، وہ اس سے پاک ہیں کہ بھولی بھالی عورتوں کے عزت و ناموس سے تعرض کریں، وہ شائستہ توار ہیں، خدا نے ان کو مزاج کے لحاظ سے نکھارا اور نتھارا ہے اور ان کو گناہ اور باطل سے پاک کیا ہے، وہ جو کچھ کہ اب تک کہا جا چکا ہے وہ موصوفہ پر چسپا ہونے والا ہرگز نہیں، وہ تو ایک ایسے شخص کی کہی ہوئی بات تھی جس نے میرے سامنے نمک مرچ لگا کر جھوٹ گھڑ کر چغل خوری کی تھی، یعنی حضرت عائشہ کی سچائی اور عبداللہ بن ابی کے نفاق کا ذکر ہے۔ फिर सूरत नूर ने एक माशरती हकीकत का असूली इस्तदलाल के तौर पर मुस्लिम जमात के सामने खोलकर रखा। क्या है आयत? आयत 26 है, अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं। खबीस किसको कहते हैं? तैयब का अपोजिट, यानी गंदगी, नापाक। और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। इनका दामन पाक है इन बातों से जो घड़ने वाले घड़ते हैं। यानी नबी पाक है तो उनकी बीवी नापाक कैसे हो सकती है? ये पैगाम है इसका। यानी इस दवाज के लिए यूं भी जहनी और इखलाकी लिहाज से जुड़ा तलाश किया जाता है, और नफ्सियाती तौर पर आदमी की निगाह है इंतखाब वहीं अटकती है जहां इसे अपने किरदार का अक्स नजर आता है। खसूसियत से किसी असूलों मकसद को लेकर जो लोग सारी मताए हयात इसमें लगा देते हैं, वो इस दवाजी राबते के लिए भी ऐसा ही रफीक तलाश करते हैं जो जिंदगी के मिशन में मुमिद्दो मुआविन साबित हो, यानी मददगार साबित हो। फिर आलमगीर पैमाने की ये तजर्बी सदाकत कैसे नज़रअंदाज की जा सकती है कि निभाव और सुलह साजगारी किसी जोड़े में तभी होती है कि कल्बो नज़र का जोड़ मेल पैदा हो जाए और जहनों किरदार में यकसानी हो, वरना अज़्ज़ल ताखिर तसादम ही रहेगा। यह एक बुहतान तराजों को दावत फिक्र देती है कि तुमने ये ना देखा कि दायरे इस दवाज में तहरीक इस्लामी के बुलंद मरतबे की रहनुमा की नजर इंतखाब जिस हस्ती पर पड़ी थी जिससे गहरा कल्बी लगाव था, जिसके साथ कल्बो नजर की साजगारी और हम आहंगी एक मियारी नमूना थी, क्या वो तमाम तर मलम्मा का करिश्मा थी कि एक आन में मलम्मा उतर कर खोट बाकी रह गया? एक पाकीज़ा घराने की नूरे चशम जिसके माँ बाप तहरीक इस्लामी के अव्वलीन अलमबरदारों में से थे और जिसका बचपन इसी तहरीक की नित उमड़ती घटाओं के साय में तरबियत फिक्रो नजर पाते गुजरा, फिर जिसे सरकार रसालत माँ के साथ यकजाई का शर्फ हासिल हुआ, जिसे करीब होकर आपके नूरानी किरदार से फायदा उठाने का सबसे बढ़कर मौका मिला, जिसे मुख्सन इंसानियत की तरबियत का फैजान खास हासिल हुआ, और जिसके हुजरे में कई बार वही और इल्हाम की किरणों की बुछाड़ें होती रहीं, कैसे पाकीज़ा माहौल के सांचे में ढली हुई खातून का किरदार ऐसा होना चाहिए ताकि एक गलीज तरीन बहतान का जामा इसके कामत पर रास्ता जाए। दर हालांकि इसके वालदैन को और न सरवर आलम को और न आम मुआशरे को इसके बारे में इस बहतान तराजी से कबल ऐसा कोई अंदाजा हो सका हो। बरसों से एक किरदार जो हुस्न व पाकिजगी के खतूत पर इर्तका करता रहा हो, ये कैसे मुमकिन है कि यकायक इसके अंदर से एक बदतरीन किस्म की घिनौनी हरकत नमूदार हो जाए कि जिसके कोई इब्तदाई आसार कभी किसी के सामने न आए हों? एक शजरा तयबा कमाल शादाबी के साथ पाकीज़ा बरगो बार देते देते यकायक एक दिन खबीस फल ले आए, आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्या समझ आया? यानी हजरत आयशा पहले से पाकिरदार थी। आप देखिए कि खुदा न खास्ता किसी की बेटी या बहन अगर इस तरह के किरदार की मालिक हो तो पहले से घर वालों को शक होता है ना, कभी कोई कोशिश पकड़ी गई होगी, कभी डांटा होगा, कभी आजमाया होगा, कुछ कहा होगा। तो हजरत आयशा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बीवी एकदम इतनी खराब काम की मुर्तकिब कैसे हो गई? अकल नहीं मानती ना। तो सारे तबसरे का खुलासा क्या था, जो बात हमें बिल्कुल समझ आ रही है कि अल्लाह ने हजरत आयशा की बेगुनाही को साबित किया। जिन लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिशें की, अल्लाह ने उनको खुद ही नीस्तो नाबूद कर दिया। और अपने लिए भी हमेशा यही याद रखना चाहिए कि अगर कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफान उठ जाए, ज़रूरी नहीं कि किसी पर जिना का इल्ज़ाम लगे, हर तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। याद रखिए, जितना ऊंचा उड़ेंगे उतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगेंगे। अपना मुहासबा कर लें, कहने वाले ने जो कहा है सच है तो फिर इसलाह कर लें, और अगर कहने वाले ने जो कहा वो झूठ है तो उसको दिमाग से उतार दें। यकीन करें अल्लाह खुद अगले के दिल को साफ कर देगा। यही जिंदगी का असूल बना लें। कोई काम नहीं किया तो फिक्र ना करें, और किया है तो फिर लोगों का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आप पे बात करके आपको आखिरत की पकड़ से बचा लिया, तो अपनी इसलाह कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसा ही खूबसूरत माशरा वजूद में लाने वाला बनाए कि जिससे हर एक की इज्जत और इस्मत महफूज रहे। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.